ये आकाशवाणी है। अब आप फरहतनाज से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जाएंगे। श्री मोदी भोपाल में लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर लोकमाता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री भोपाल में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। श्री मोदी दतिया और सतना हवाई अड्डों का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी इंदौर मेट्रो की येलो लाइन पर यात्री सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री ने कल उत्तर प्रदेश के कानपुर में 47,500 करोड़ रूपये से अधिक की 15 मेगा विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने चुन्नीगंज और न्यायगंज के बीच कानपुर मेट्रो के नए कॉरिडोर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के रूप में पूरी दुनिया ने बेटियों के गुस्से और दर्द को देखा और भारत ने पाकिस्तान में कई आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान दुनिया ने भारत के स्वदेशी हथियारों की ताकत देखी है।
ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने भारत के स्वदेशी हथियारों और मेक इन इंडिया की ताकत भी देखी है। हमारे ब्रह्मोस मिसाइल ने दुश्मन के घर में घुसकर तबाही मचाई। जहां टारगेट तय किया वहां धमाके किए। ये ताकत हमें आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से मिली है।
प्रधानमंत्री ने आतंक के खिलाफ संघर्ष में भारत के 3 सिद्धांतों को स्पष्ट किया।
पहला, भारत हर आतंकी हमले का करारा जवाब देगा। दूसरा, भारत अब एटम बम की गीदड़ बप्पी से नहीं डरेगा। तीसरा, आतंकी सरपरस्त सरकार को भारत एक ही नजर से देखेगा।
इससे पहले प्रधानमंत्री ने बिहार के रोहतास जिले के दुर्गाढी गांव में 48,500 करोड़ रूपये से अधिक मूल्य की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि भारत आतंकवाद को रोकने के लिए किसी भी कार्रवाई से संकोच नहीं करेगा। गोवा में श्री सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है बल्कि आतंकवाद पर भारत का सीधा हमला है। गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की ओर से की गई गोलाबारी से प्रभावित लोगों के लिए विशेष राहत पैकेज की घोषणा की। गृहमंत्री ने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में वर्तमान 90,000 बंकरों की संख्या बढ़ाई जाएगी और यहां बसे लोगों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए अतिरिक्त कदम भी उठाए जाएंगे। पुंछ में उन्होंने गोलाबारी में मारे गए लोगों के परिवार के सदस्यों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। महाराष्ट्र में कल कोविड के 84 नए मामले सामने आए। इनमें मुंबई से 32, पिंपरी चिंचवाड़ से 19 और थाने से 14 मामले दर्ज किए गए। राज्य में कोविड के सक्रिय मरीजों की कुल संख्या 467 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि कोविड उपचार के लिए राज्य में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। साहित्य अकादमी ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में 2 दिवसीय साहित्यिक सम्मेलन का आयोजन किया। इसका विषय था साहित्य में कितना बदलाव आया है। सम्मेलन में नारीवादी साहित्य, साहित्य में बदलाव और भारतीय साहित्य में नई दिशाओं पर सत्र आयोजित किए गए। वक्ताओं ने साहित्य में महिलाओं के योगदान, समाज को आकार देने में साहित्य की भूमिका और भारतीय लेखन में वैश्वीकरण के प्रभाव पर भी प्रकाश डाला। इसराइल के हवाई हमलों में गाजा पट्टी में 27 लोग मारे गए हैं। ये हमले ऐसे समय में हुए हैं जब हमास इसराइल द्वारा स्वीकृत नए युद्ध विराम प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि गाजा पर इसराइली नाकाबंदी ने लगभग 20 लाख फिलिस्तीनियों को भूखमरी के कगार पर पहुंचा दिया है। अस्पताल के निदेशक ने कहा है कि उत्तरी गाजा में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाला अंतिम अस्पताल भी बंद हो गया है क्योंकि इसराइली सेना ने उसे तत्काल खाली करने का आदेश दिया है। मंगोलिया की राजधानी उलान बतोर में भारत और मंगोलिया के बीच आज से सैन्य अभ्यास शुरू हो रहा है जो 13 जून तक चलेगा। इसका उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच अर्धशहरी और पर्वतीय इलाकों में अर्ध पारंपरिक सैन्य अभियान के लिए तालमेल बढ़ाना है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है जिससे तंबाकू के उपयोग के खतरों के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। ये दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तंबाकू के उपयोग को समाप्त करने के लिए एक वैश्विक पहल है। आईपीएल T20 क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने चंडीगढ़ में खेले गए